My beloved brothers,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सुबह हमने सुंदर संदेश सुने हैं और मैं हम सभी को धन्यवाद देता हूँ. मैं विशेष रूप से अपने एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स को धन्यवाद देता हूँ कि वह हमारे साथ हैं. हम तुम्हें से प्यार करते हैं बॉब. जब मैं मनन कर रहा था कि मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने सोचा कि मैं अनुभूतियां और प्रभाव आपसे कहूं. मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी बातों में मार्गदर्शन मिले. मैंने इस पृथ्वी पर 84 साल तक रहा हूं. आपकी स्थिति को समझाने के लिए, मैं उस वर्ष पैदा हुआ था जब चार्ल्स टिंडबर्ग ने न्यूयॉर्क से पेरिस तक एक ही इंजन वाले प्लेन पर यात्रा की थी. इन 84 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है. मनुष्य द्वारा चांद की यात्रा कर चुका है. असल में अतीत की विज्ञान काल्पनिक कथाएं आज की सच्चाई बन गई हैं, जिन्हें वे पुराने घुमाकर नंबर डायल करने वाले टेलीफोन और पुराने टाइपराइटर की याद है, उनके लिए आज की तकनीकी बहुत ही अचरज भरी है. समाज के नैतिक मूल्य भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं. वह व्यवहार के जो पहले अनुचित थे, आजकल उचित माने जाते हैं, बल्कि बहुत लोगों से द्वारा अपनाए भी गए हैं. हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल में मैंने पढ़ा था मुख्य रबी जॉनथन सैक्स से 1960 में, लगभग सभी पश्चिम समाज में नैतिक क्रांति हुई थी, जिसमें पारंपरिक नियमों और परित्याग कर दिया गया था, जिसके अनुसार लोग अपने व्यवहार का नियंत्रण करते थे. आप सिर्फ बीटल्स का ऑल यू नीड इज लव गया, इसके स्थान पर यह कहावत आ गई, जो आपके लिए करता है उसे करो. 10 आज्ञाओं को 10 रचनात्मक सुझाव के रूप में दोबारा गया. रबी सैक्स खेत से आगे बढ़ते हैं. हमने अपने नैतिक नियमों को इतनी लापरवाही से छोड़ दिया है कि अपने आर्थिक सत्रों को गंवा रहे हैं. संसार का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां धर्म की बात अतीत की बात हो गई है, और उन संसारिक विचारों का विरोध कोई नहीं करता जो लोगों को वस्तुओं खरीदने, धन करने, भड़कीले वस्त्र पहनने और दिखवाने करने के लिए उत्सुक करते हैं. मेरे भाइयों और बहनों, यह दुर्भाग्य से ये बातें हमारे आसपास के संसार का वर्णन करती हैं. क्या हम बहुत अधिक चिंता करने और सोचने की जरूरत है कि हम इस संसार में किस तरह जीवित पाएंगे? नहीं. असल में हमारे जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार है, और हम जानते हैं कि नैतिकता आउट ऑफ फैशन नहीं है, कि हमारी मार्गदर्शन करने के लिए हमारी अंतरात्मा है, और अपने कामों के लिए हम जिम्मेदार हैं. यद्यपि संसार में बदल गया है, परमेश्वर के नियम नहीं बदले हैं. वे बदले नहीं है और बदलेंगे नहीं. 10 आज्ञाएं वही आज्ञाएं हैं, वे सुझाव नहीं हैं. इसका हर एक हिस्सा जरूरी है, जितना था जब परमेश्वर ने इन्हें इसराइल के बच्चों के लिए दिया था. यदि हम ध्यान से सुने तो हमें अभी भी परमेश्वर की वाणी की प्रतिध्वनि सुनाई देगी. तू मुझे छोड़कर दूसरे की ईश्वर करके न मानना. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना. तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना. तू विश्राम दिन के पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने पिता और माता का आदर करना। तू खून ना करना। तू व्यभिचार ना करना। तू चोरी ना करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के घर का लालच ना करना। हमारे व्यवहार के नियम स्पष्ट हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। यह केवल 10 आज्ञाएं में ही नहीं, लेकिन पहाड़ पर उपदेश भी हैं। उस उद्धारकर्ता ने तब दिए थे जब वहाँ स्वयं पृथ्वी पर थे। वे उसकी सारी शिक्षाओं में मिलते हैं। यह वर्तमान के प्रतिकरण के शब्दों में मिलते हैं। स्वर्ग में हमारे पिता कल आज एक सच हैं। भविष्यवक्ता मॉर्मन हमें बताते हैं कि परमेश्वर अनंत से अकस्मान हैं और अनंत तक अकस्मान रहेंगे। इस संसार में जहां लगभग सब कुछ बदल जा रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है जिस पर भरोसा कर सकते हैं। एक ऐसे लंगर है जिसमें मजबूती से पकड़ सकते हैं, सुरक्षा हो सकती है। कहीं ऐसा न भयंकर तूफान हमें उड़ा ले जाए। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि जो संसार में कामों को करते हैं वे आपसे अधिक मजा लेते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बताता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे जीवन में अधिक खुशी या हमारे आत्मा को अधिक शांति दे सकता है, सिवाय के एहसास के जो उद्धारकर्ता का अनुसरण करें और आज्ञाओं का पालन करने से मिलती है। वह एहसास उन सब कामों में नहीं होता जिसमें यह संसार इतना व्यस्त रहता है। अपोस्टल पॉल ने सच्चाई को बताया। प्राकृत मनुष्य परमेश्वर के आत्मा द्वारा प्राकृषित सत्य को ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए मूर्खता है। वह उन्हें समझे नहीं पाती क्योंकि वह आत्मा के आधार पर ही परखी जा सकती हैं। शब्द प्राकृतिक मनुष्य हमें के किसी के लिए भी उपयोग हो सकता है यदि हम ऐसा बनना चाहते हैं। यह जरूरी है कि हम उन बातों को स्वीकार कर दें हमारे स्तर से मेल नहीं खाती। कभी भी हम उसे न छोड़ें जिस पर हम बहुत चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन। हालांकि हम इनका सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार होंगे, इनसे सीखेंगे और इन पर विजय पाएंगे यदि हमारे जीवन की बुनियाद सुसमाचार और हमारे हृदय में उद्धारकर्ता का प्रेम है। इस संसार में रहने परंतु इस संसार का न होने के रूप में। प्रोफेसर आइज़ाया ने बताया कि सही करने से शांति मिलती है। इस संसार में रहने परंतु इस संसार का न होने के रूप में, यह जरूरी है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करें। वह चाहता है कि हम ऐसा करें। वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। उद्धारकर्ता में चेतावनी देते हैं, जैसा कि 3 नफी अध्याय 18 में लिखा है, जागते रहो और सदैव प्रार्थना करते रहो, नहीं तो तुम बहकाके में पड़ जाओगे, क्योंकि शैतान चाहता है कि इसलिए तुम पिता से सदैव मेरे नाम में प्रार्थना किया करो। तुम जो कुछ मेरे नाम पर पिता से पाने का विश्वास कर मांगोगे और अगर तुम्हारी मांग उचित रही तब सुनो, वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरी प्रार्थना की शक्ति की अपनी गवाही 12 वर्ष की आयु में पाई थी। मैंने कुछ धन कमाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की थी और $5 बचा पाया था। यह उस महान मंदी के दौरान था जब $5 बहुत अधिक हुआ करता था, विशेषकर मुझ जैसे 12 साल के लड़के के लिए। मैंने अपने सारे सिक्के जो कि कुछ $5 के थे अपने पिता को दिए थे और उन्होंने मुझे $5 का एक नोट दिया था। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ विशेष खरीदने की योजना की थी। इतने साल बाद मुझे याद नहीं वह क्या था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह धन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय हमारे पास धोने की कपड़े की मशीन नहीं थी, इसलिए मेरी माँ हर सप्ताह हमारे कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री भेजती थी। वो कुछ दिनों बाद लॉन्ड्री से हमारे गीले कपड़े आते थे जिनके वो पीछे रस्सी पर सुखाने के लिए डाल देती थी। मैंने $5 के नोट को अपनी जीन्स के पॉकेट में रखा था और जैसा कि शायद आप समझ ही गए होंगे, मेरी जीन्स को लॉन्ड्री के लिए भेज दिया गया। जब मुझे समझ से आया कि क्या हुआ था, मैं बहुत चिंतित हो गया। मैं जानता था कि लॉन्ड्री में कपड़ों को धोने से पहले उनकी जेबों की जांच की जाती थी। यदि मेरा नोट उस समय ना भी मिला तो मुझे मालूम था कि धुलाई के समय वह कहीं किसी गिर जाएगा और लॉन्ड्री में काम करने वाले इसे उठा लेंगे और वह नहीं जानेंगे किसको लौटाना है। मुझे $5 वापस मिलने की उम्मीद बहुत ही कम थी। मैं उस नोट को चाहता था, मुझे उस नोट की जरूरत थी। उसे कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने महसूस किया केवल एक ही काम कर सकता था जिसमें कर सकता था। अपनी परेशानी में मैंने अपने स्वर्ग के पिता के पास गया और प्रार्थना की कि वो नोट मुझे मिल जाए। दो बहुत लंबे दिन बाद जब मुझे पता चला कि हमारे गीले कपड़े वापस आने का समय हो गया है, मैं खिड़की के पास बैठकर इंतजार करने लगा। जैसे ही लॉन्ड्री का ट्रक आया, मैं हृदय से जोर से धड़कने लगा। जैसे ही गीले कपड़े हमारे घर अंदर आए, मैं जल्दी से अपनी जीन्स उठाई और अपने कमरे में भाग गया। कांपते हुए मैंने अपनी जीन्स में पॉकेट में हाथ डाला। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। तुरंत तभी मेरी उंगलियां ने उस गीले $5 के नोट को छुआ। जैसे ही मैंने इसे जेब से बाहर निकाला, मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपने स्वर्ग के पिता को धन्यवाद की प्रार्थना की, क्योंकि मैं जानता था कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। उस समय के बाद से मुझे अनगिनत प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने प्रार्थना नहीं की हो। यह वह संबंध है जो मुझे बहुत संजोकर रखता हूँ। इसके बिना मैं खो चुका होता। यदि आपके पास ऐसा संबंध नहीं है अपने स्वर्ग के पिता के साथ, मैं आपको उस लक्ष्य के प्रति काम करने के लिए कहता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने जीवन में उसकी प्रेरणा और मार्गदर्शन पाने के योग्य हो जाते हैं। यह हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और हमारी आत्मिक रूप से इस पृथ्वी पर जीवित रहने चाहते हैं। यह प्रेरणा और मार्गदर्शन ऐसे उपहार हैं जो हमें मुफ्त में देते हैं, लेकिन हमें इन्हें पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बहुमूल्य खजाने हैं। मैं हमेशा विनम्र और आभारी होता हूँ जब मुझे स्वर्गीय पिता मुझे अपनी प्रेरणा द्वारा बातचीत करते हैं। मैंने इसे पहचानना, इस पर भरोसा करना और उसका अनुसरण काम करना सीखा है। कई बार मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिली है। अगस्त 1987 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी के मंदिर के समर्पण दिवस को एक नाटकीय अनुभव हुआ था। समर्पण दिवस के पहले दिन अध्यक्ष एज़रा टेफ्ट बेंसन हमारे साथ थे, लेकिन घर वापस चले गए थे। इसके लिए बाकी बचे सत्रों का संचालन करने के लिए मुझे मौका मिला। शनिवार को हमारे सत्र डच सदस्यों के लिए, जो कि फ्रैंकफर्ट मंदिर के जिले के थे, मैं नीदरलैंड के हमारे चार बेहतरीन मार्गदर्शकों में से एक भाई पीटर मॉरिक को अच्छी तरह जानता था। सत्र से ठीक पहले मुझे महसूस हुआ कि मुझे भाई मॉरिक से उनको कहने के लिए कहना चाहिए, लेकिन वह मंदिर में नहीं थे। जब मैं खड़ा हुआ, मुझे बताया गया कि ब्रदर मॉरिक टेंपल में नहीं थे और वो कई और काम से गए हुए थे। सत्र शुरू करने से ठीक पहले मुझे एल्डर, जब मैं मंच पर खड़ा हुआ, एक दूसरी प्रेरणा मिली कि मुझे पीटर मॉरिक से पहला वक्ता के रूप में घोषणा करनी चाहिए। मुझे अब एल्डर एसे ने बताया था कि वो टेंपल में नहीं थे, फिर भी प्रेरणा पर भरोसा करते हुए मैंने गायक मंडली की प्रस्तुति प्रार्थना की घोषणा कर दी और बताया कि हमारे पहले वक्ता भाई पीटर मॉरिक होंगे। जब मैं अपनी सीट पर वापस आया, मैंने एल्डर एसे की ओर देखा और पाया उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैंने भाई मॉरिक की पहली वक्ता के रूप में घोषणा की थी। वो जानते थे, कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे नहीं जानते थे मैंने ब्रदर मॉरिक की घोषणा क्यों की थी जब वे मंदिर में कहीं थे ही नहीं। जब ये सब कुछ हो रहा था, पीटर मॉरिक क्षेत्रों मार्गदर्शकों के साथ पोर्टस्ट्रासिस के सभी सभा में थे। जैसे उनकी सभा चल रही थी, वह अचानक एल्डर हॉक्स की ओर मुड़े, जो कि तब क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे, और पूछा, आप मुझे कितनी जल्दी मंदिर पहुंचा सकते हैं? एल्डर हॉक्स, जो स्पोर्ट्स कार बहुत तेज चलाते थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट में पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम मंदिर क्यों जाना चाहते हो? भाई मॉरिक ने स्वीकार किया कि वे नहीं जानते थे, लेकिन वे उन्हें वहां होना था। वे तुरंत दोनों मंदिर के लिए निकल गए। गायक मंडली के सुंदर गीत के दौरान मैं चारों ओर देख रहा था कि ब्रदर मॉरिक दिखाई दें मुझे, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। फिर भी मुझे आश्चर्य था कि मैं चिंतित नहीं था। मुझे मधुर पक्का आश्वासन था कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही आरंभिक प्रार्थना समाप्त हुई, भाई मॉरिक ने मंदिर के अगले दरवाजे से प्रवेश किया। फिर भी उन्हें पता नहीं था कि वह वहां क्यों थे। जब वे जल्दी जल्दी हॉल के आ रहे थे, उन्होंने मॉनिटर पर मेरी शक्ल देखी और घोषणा सुनी, अब हम भाई पीटर मॉरिक से सुनेंगे। एल्डर ऐसे को चकित करते हुए, पीटर मॉरिक तुरंत कमरे में आए और मंच पर अपने स्थान ग्रहण किया। सत्र के बाद भाई मॉरिक ने मैंने चर्चा की कि जो भी सब हुआ था, मैंने उस प्रेरणा पर मनन किया था जो उस दिन न केवल मुझे मिली थी बल्कि भाई पीटर मॉरिक को भी मिली थी। उस आश्चर्यजनक अनुभव ने मुझे इस प्रकार की प्रेरणा पाने के योग्य होने के लिए, फिर जब यह मिलता है, इस पर भरोसा करने और इसका अनुसरण काम करने सिखाया। मैं जानता हूं कि प्रभु उस सत्र के जो सदस्य थे चाहते थे कि ब्रदर भाई पीटर मॉरिक की टेस्टिमोनी सुने। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन के तूफानों और कठिनाइयों के सामने करने के लिए उससे प्रार्थना करना, स्वर्गीय पिता के साथ बातचीत करना जरूरी है। प्रभु हमें उनके निकट आने का निमंत्रण देते हैं और हमारे निकट आएंगे। यदि हम परिश्रम से उसकी खोज करते हैं तो हम उसे पाएंगे। जबकि हमारे चारों ओर संसार बदल रहा है और हमारी आँखों के सामने समाज के नैतिक मूल्य की डोर टूट रही है, यदि हम परिश्रम करें उसकी खोज करें तो हम उसे पा सकेंगे। हम प्रभु का वादे को याद रखें, मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दहीने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। काश हमें यह आशीष मिले, क्या वादा है, काश हमारा यह आशीष मिले। मैं हमारे प्रभु उद्धारता यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ, ईसा मसीह, आमीन।